एक लम्हे के लिए सोचिए, हाथों में से लोग निकल जाते हैं, सच के नहीं, कैसे जाते हैं? आपके भी तो घरों में कई ऐसी मौतें हुई होंगी ना। हमने मुल्क की सतह पे कितने लोगों को अचानक जाते देखा। अभी रिसेंटली हादसे में कुछ लोग चले गए ना, गए ना। आज क्या है, एक आध दिन पहले मैं किसी साथी के साथ ही तो हम किसी जगह गए, तो इसी नाम से मुझे शॉप दिखी, तो लोग तो वहां खड़े शॉपिंग कर रहे थे और सेल कोई लगी हुई थी, ऐसे लग रहा था मुफ्त बट रहा है। वल्लाही ऐसे मुझे अंदाजा हुआ, चंद लम्हे मुझे वहां खड़े होना पड़ा। मैंने कहा ये सब मुफ्त दे रहे हैं, और दीवानों की तरह, और एक एक औरत के यकीन करे हाथ में कोई 10-10 हैंगर्स थे। कहने लगी थी ये सेल लगी है जो फलाने दिन खत्म हो जानी है। मेरे जहन में उस वक्त सिर्फ ये नाम था कि ये नाम की तरह, मुझे कोई केयर नहीं कि ये स्टोर किसका है, फ्रेंचाइज है, इसका प्रॉफिट किसको किसको, मैं उस नाम में खोई भी थी कि ये नाम जिस पे है वो बंदा इस वक्त की तरह। वल तंजुर नफ्सुम्मा कद्दमत लिगत, हलाल से कमाया तो निजात है, हराम से कमाया तो जवाबदेही है। इस दुनिया में रहें लेकिन नजरें आखिरत पे लगी हों। आप एक छोटी सी मिसाल लीजिए कि यहाँ पाकिस्तान में कम मौका मिलता है इस चीज़ का, लेकिन ट्रेन स्टेशन पे खड़े हुए मुसाफिरों को जेहन में लाइए। यहाँ तो माशाल्लाह इतनी ही गाड़ियाँ बहुत हैं सबके पास, कम ही लोग हैं जो लोकल सर्विस यूज़ करते हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में जिनके पास गाड़ियाँ हैं भी, उनमें से भी अक्सरियत जो है वो ट्रेन्स और बसों में सफ़र करते हैं, क्योंकि सिस्टम बहुत ऑर्गेनाइज है। अपनी गाड़ी रखना बहुत एक्सपेंसिव है, एक एक मिनट पे नजर लगी होती है, वो साथ साथ स्लाइड चल रही होती हैं, फुलां ट्रैक पे फुलां गाड़ी इतने में आ रही है, इतने सेकंड में आएगी, ये है वो है दिस एंड दैट। और जो ही किसी की ट्रेन आती है वो फुर्ती से अपनी जगह से उठ के, क्योंकि ट्रेन ने विद इन 1 मिनट चल पड़ना है। क्या मैं और आप ट्रेन स्टेशन पे खड़े उस मुसाफिर की तरह नहीं है? किसी भी वक्त तो हमारी गाड़ी आएगी ना। चलिए तस्वुर में सोचते हैं, होना कुछ भी नहीं, याद रखें सोचने से मरेंगे नहीं, लेकिन तस्वुर में खुद को मरा हुआ सोचते हैं, हमारी खबर फैलती है। और जब मौत आएगी ना, तो पहले तो आपको पता है कि सांस उखड़ता है, हिचकी लगती है, और फिर एकदम लोगों में शोर मच जाएगा, इनको क्या हुआ, पकड़ो इनको बिठाओ, कोई सीना मलेगा, कोई सांस देगा, कोई कमर पे हाथ मारेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन हमारी सांस वापस नहीं आएगी, और उसके बाद फिर आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी, और उसके बाद फिर हाथ ठंडे होंगे, पाँव से जान निकलेगी। क्या अपने लिए सब सोचना आसान है? ऐसे नहीं लगता कि हमारे सिवा सबको मौत आनी है? अपनी मौत का सबसे कम यकीन है। मैंने कई ऐसे लोगों को जिनके बारे में बाहर दूसरे लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, कोई कहता है 4 महीने है, कोई कहता है 2 महीने है, कोई कहता है आखिरी हफ्ता है, ऐसे लोग बाहर बातें फैलती है ना। मैंने उस मरीज के पास जाके भी देखा है, तो उसके अंदर भी एक होप होती है कि नहीं आप, मैं बेहतर हो रहा हूँ, अब मैंने ठीक हो जाना है। अपनी मौत का यकीन नहीं आता, ऐसे लगता है नहीं ये टल जानी है, और जब कोई अपना चला जाए तो ऐसे लगता है अभी थोड़ी देर बाद फोन आएगा, नहीं वो खबर झूठी थी, सांस आ गई, ऐसे लगता है ना। लेकिन सबको जाना है, असल जो खतरा है ना वो ये है कि नाफरमानियों के साथ जीना। आप देखिए कि दिन ब दिन जो बेहयाई फैल रही है, मैं इस चीज पे बहुत तकलीफ महसूस करती हूँ। मैंने आपने अगर मगरिब पढ़ी तो पढ़ी होगी, किसी को पता, आप सब जितने साथी बैठे हैं, क्या आपको मुझे पता कि सुबह से हमने 4 नमाजें पढ़ी हैं? नहीं पता। आज हम में से किसका रोजा था? नहीं पता। हम में से किसने आज सदका दिया? नहीं पता, ये तो नहीं पता चलता। बट हम में से हर एक बाहर दुनिया में किस तौर तरीके से जिया, किस जगह कहाँ से गुजरा, क्या ये हमें पता कि नहीं पता? पर्दा किसको नहीं पता? एक औरत का मर्दों से बात करने का अंदाज क्या होना चाहिए, किसको नहीं पता? हया क्या होती है, हिजाब क्या होता है, किसको नहीं पता? लेकिन मानते कितने? वजह, मैं बहुत अरसे बाद कुछ लोगों को मिली, बहुत अरसे बाद, हर जगह इंसान मुख्तलिफ लोगों को कभी जिंदगी में मिलता है, जब मैं बहुत अरसे के बाद किसी को मिलती हूँ ना, तो मेरा जहन किस सवाल पे चला जाता है, आज से 10 साल पहले ये कैसी थी, आज भी वैसी, आज से 15 साल पहले भी ऐसी थी, अब भी ऐसी है, कुछ में तो बिग चेंज होता है ना, एक तो उम्र का चेंज है, लेकिन हम सबको एक हदीस पे गौर करना है कि जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं हुआ वो तबाह हो गया। आप देखें ना, नया घर बना है, साथ साथ उसको रेनोवेट करते रहे तो कभी पुराना नहीं होगा, लेकिन जिस घर की मेंटेनेंस ना करें 5-6 साल में घर पुराना हो जाएगा, फिर ऐसे लगेगा कि कभी ये बना ही नहीं था। तो मुझे आपको हर वक्त फिक्र करनी है इस बात की कि वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगत, और याद रखिए ये तैयारी अगर करने लग गए ना तो दुनिया के बहुत सारे गमों से आजाद हो जाएंगे। और ये मैं आपको नुस्खा बता रही हूँ, जिंदगी में खुशी गम दुख सुख आते हैं, हम सब के आते हैं, हम सब इंसान हैं। जब दुनिया का कोई मसला सामने आ जाए और आपको लगे कि एनफ इज एनफ, बस अब मेरी खत्म, अब तो सारे ही रास्ते बंद हैं, अब तो कोई उम्मीद की किरण नहीं, उस वक्त इस बात को याद कीजिएगा कि वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। आप कहे छोड़ो इसको, मैं जरा पहले आखिरत की तैयारी ना कर लूं, जब आप उसकी तैयारी में लगेंगे ना तब भूल ही जाएंगे। और अल्लाह ताला कहते हैं ला यस्तवी असहाबुन नार व असहाबुल जन्ना, जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं होते, क्योंकि असहाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, जन्नत वाले तो कामयाब हैं। ये नहीं कहा गया कि असहाबुन नार हुमुल खासिरून, बस ये कह दिया कि जन्नत वाले कामयाब हैं, तो खुद ही समझ जाओ कि जहन्नम वाले तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। थोड़ा सा इसको समझते हैं, मेरी फेवरेट आयतों में से एक आयत है, और जब भी मैं ये आयतें पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत इब्तदाई दिनों के दर्श याद आ जाते हैं। ये उन आयतों में से हैं जिसने वाकई ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े फैसले करने पे तैयार किया। और वो क्या है कि जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं होते। कैसे नहीं बराबर होते? इसलिए कि दुनिया में इनका जीना मरना बराबर नहीं होता, इनकी पसंद नापसंद बराबर नहीं होती, इनका लाइफस्टाइल बराबर नहीं होता। ये दो डिफरेंट कोड ऑफ लाइफ है। जन्नत के रास्ते पे चलने वाला और जहन्नुम के रास्ते में चलने वाला, आपको उसमें जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। आप देखिए, आप शारे फैसल पे जा रहे हैं ना, तो अगर आप नॉर्थ से ईस्ट और ईस्ट से नॉर्थ जा रहे हैं, फर्क होगा ना, एक लाइन उधर जाने वाली है, दूसरी दूसरी तरफ आने वाली है। आपने पहुंच जाना है एयरपोर्ट और आप अपनी गाड़ी का रुख कर लें सदर की तरफ, कहाँ पहुंचेंगे? एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और आप एक टर्न ले लें शहीद मिलत रोड पे, पहुंचेंगे कभी एयरपोर्ट पे? बहुत सारे लोगों की आज गलत फहमी क्या है, वो सोचते हैं कि हम रोड टू जन्ना पे, हम सबीलुल जन्ना पे हैं, लेकिन वो असहाबुन नार की रोड पे आ चुके होते हैं। ख्वाहिशों से जन्नत नहीं मिलती, हाँ ख्वाहिश जन्नत की तैयारी करने में मददगार होती है। दुआओं से जन्नत नहीं मिलती, लेकिन दुआओं की वजह से जन्नत का रास्ता मिल जाता है। अब चलना अपने खुद है। जन्नत मिलती है अमल से। कैसे? अमल से जिंदगी बनती है। जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्या सोचते हैं जन्नत और जहन्नम ऐसे है, जैसे मैं बैठी ना, ये राइट हैंड पे जन्नत है और लेफ्ट हैंड पे जहन्नम है, और हम अपनी गाड़ी लेके आएंगे, गौर से देखेंगे किधर टर्न लेना है, ओके टेक राइट, जन्नत में पहुंच गए, और दूसरे कहीं लेफ्ट लो तो जहन्नम में पहुंच जाएंगे। और देखना पीछे से कोई ऐसा रास्ता होगा कि हमने घूम के फिर एक ही पार्किंग लॉट में घूमना है। नो, ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्ना, ये कैसे? थोड़ा सा इसको समझते हैं। कभी आप पहाड़ी इलाकों में सफर करते होंगे ना, किए? आप देखिए, एक हिली इलाका होता है ना, आप ऊपर जाते हैं और एक है नीचे जाना, फर्क है। ऊपर जाने के लिए मुश्किल होती है, फोर व्हील गाड़ी चाहिए होती है, बहुत स्ट्रांग ड्राइवर चाहिए होता है, आपकी गाड़ी के ब्रेक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। कदम कदम फूंक के आप ऊपर जाते हैं, और स्लोप पे जाते हुए आप रुक नहीं सकते, या आप ऊपर जाएंगे या गिरेंगे तो नीचे गिरेंगे। जबकि गाड़ी को नीचे जाना उस वक्त क्या होता है, ब्रेक से पांव उठा ले, सीधी नीचे। ऊपर क्या है? जन्नत, और जहन्नम नीचे है। आज भी प्रैक्टिकली भी आसमानों के ऊपर जन्नत है और जमीन की तहों में आज जहन्नम है। जन्नत में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब कुछ ऊपर देखना पड़ेगा, बड़े इरादे, मेहनत, कोशिश, बहुत ज्यादा फिक्र की जरूरत होगी। और जहन्नम पे जाने के लिए एक लफ्ज याद कर ले, ख्वाहिशों पे काबू पा ले। अल्लाह के नबी सल्लम की बहुत प्यारी हदीस है कि हुफ्फत नार बिश शखवात, जहन्नम ख्वाहिशों से ढांप दी गई है। यानी ख्वाहिशों के पीछे चलने वाले जहन्नुम के रास्ते पे जाएंगे। और मैं अक्सर कहती हूँ, अल्लाह ताला ख्वाहिशों को दबा दे, मूव कर दे, मुंतकिल कर दे। क्यों? कि ये ख्वाहिशें ही रुसवा करती हैं। और आप आजमा के देखें, घर जाके अकेले में सोचिएगा, अक्सर गुनाह ख्वाहिशों की वजह से होते हैं। बेपरतगी क्यों करते हैं? ख्वाहिश है ना अच्छे लगे। हराम क्यों कमाता है मर्द? ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। नाफरमानियां ख्वाहिशों में। आंखें क्यों गंदी चीजें देखती हैं? ख्वाहिश है। कान गंदे बोल क्यों सुनते हैं? ख्वाहिश है। ये ख्वाहिश ही है जिसके बारे में कुरान भी फरमाता है, क्या फराई था मन तखज इलाहु हवाहु, क्या बस तूने उस शख्स को देखा कि जिसने अपनी ख्वाहिश को खुदा बना लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस जमीन पर नफ्स से बड़ा बुत कोई नहीं है जिसको लोग पूछते हैं। तो जब एक इंसान ख्वाहिश परस्त होता है ना, फिर वो होता है जो अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज हम मुसलमानों के साथ हो रहा। देखिए काफिर है ना, वो ख्वाहिशों के पीछे भागे, उसका हक है, ही डिजर्व्स। क्यों? उसके लिए आखिरत नहीं है, उसको तो पता है बस मरना है और आगे जाना है। मुसलमान की ख्वाहिशों को अल्लाह ने खत्म नहीं किया। याद रखें, हमारे इस्लाम ख्वाहिशों को खत्म नहीं करता, उनको चैनलाइज करता है। कुछ यहां पूरी कर लो जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक है, और बाकी बस मूव कर दीजिए कि अल्लाह इनकी डिलीवरी मैं आगे जाके आपसे लूंगी। और जिसने अपनी ख्वाहिश को अल्लाह की ख्वाहिश के आगे झुका दिया, अल्लाह उसके लिए आसानियां कर देता है। खुशकिस्मत है वो लोग के जिनके दिल में हराम की ख्वाहिश ही नहीं उठती, नाफरमानी का शौक ही नहीं है। अल्लाह को नाराज करके वो खुश नहीं होते। किसी ने सवाल किया, अच्छा अगर कोई ऐसी महफिल है जहां ये कुछ चल रहा है, जो कुछ भी होता है जो अल्लाह की नाफरमानी का है, तो फिर क्या वहां बैठ सकते हैं मजबूरी में, ये है वो है? हाँ, वैसे हमारा दिल नहीं कर रहा होता कि हम वहां बैठे। तो उसका सिंपल सा क्राइटेरियन किसी ने बताया कि जब आप किसी ऐसी महफिल में बैठते हैं जहां हर वो चीज है जो आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल को नहीं पसंद, फरिश्ते वहां नहीं होंगे, अल्लाह के नबी आ जाए उस शहर में तो वो वहां नहीं बैठेंगे और आप बैठे हैं, तो जरा आप बताइए कि क्या आपकी कैफियत वहां वो होती है जो नागवार चीजों को देखते हुए होती है? क्या आपको गुस्सा आ रहा होता है? आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है? आपकी नसें तनती हैं? क्या आपको उस वक्त वहां पल्पेशन होती है? आपको वहां खौफ आता है कि अगर यहां मैं मर गई तो मेरी मौत या मेरा आखिरी काम ये होगा? अगर ये सब नहीं होता तो माजरत के साथ कहूंगी कि आप वहां मजबूरी में नहीं बैठे, ख्वाहिश से बैठे। दुनिया का कौन सा इंसान इतना बड़ा है कि जो अल्लाह से ज्यादा आपके मेरे लिए जरूरी है? कोई खून का रिश्ता भी हो उसको ठुकराएं, तभी तो ईमान मिलता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वलतंज़ुर नफ्सु मा क़द्दमत लिग़द। और हमारा हाल क्या है कि अक्सर हम अल्लाह को नाराज करके छोटे छोटे रिश्तों को बचा लेते हैं, और याद रखिए वो हमारे नहीं बनेंगे, इसके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। आप और मैं दुनिया में बैठे हैं, चलिए एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन, क्या आप जन्नत में जाएंगी? कितनों को लगता है, किसको यकीन है कि मैं जन्नत में जरूर जाऊंगी? अपने दिल में रख लें इसका जवाब। पहली तो बात है कि अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में ले जाए, जहन्नम से बचा कर। ये ना कहिए कि जहन्नम से गुजार कर, आप कहेंगे ये क्या होता है, बिल्कुल फर्क है। देखिए ये जो हमारे दिलों में बात है ना कि उम्मत मुस्लिमा जन्नत में जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, ये जाएगी। लेकिन فَمَنْ زُخْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ। फरमाए जो जहन्नम से बचा कर जन्नत में दाखिल किया गया वो कामयाब है। ये क्या बात हुई? वापिस लाए अपने जहन को कि मैं और आप, हम कोशिश कर रहे हैं कि जन्नत में जाएं, हमारी ख्वाहिश है। मैं आपसे पूछती हूँ आप जन्नत में जाएंगी? कई लोगों ने इसके मुख्तलिफ जवाब दिए हैं। अक्सर लोग क्या कहते हैं, पता नहीं। कोई कहता है अल्लाह ने जिधर ले जाना है ले जाएगा, कोई कहता है जी हमें तो जरूर जाना है, और कोई कुछ कोई कुछ। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हम किस रास्ते के राही हैं। आप देखिए कि दुनिया में कोई काम होना हो तो उसकी कोई अलामतें नजर आती हैं, सिम्टम्स। मसलन शादी होने वाली है इस घर में एक हफ्ते के बाद, और कोई घर में आए तो क्या उसको घर के अंदर चीजों, बातों, कपड़ों, थोड़ी बहुत जो भी एक एक्स्ट्रा थिंग्स होती हैं उससे फर्क महसूस होगा कि इस घर में शादी हो रही है? बिल्कुल फर्क होगा, कहेंगे खैरियत है भाई, ये क्या हो रहा है ना। चले भाई, आपने अमेरिका जाना है, या आपने उमरे पे जाना है, या आपने दुबई जाना है, क्या सफर पे जाने से एक हफ्ता पहले एहसास शुरू हो जाता है कि आपने कहीं जाना है? सूटकेस खरीदेंगे, कहीं पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे, कहीं वीजा लगवाएंगे, कहीं ट्रेवल एजेंसी के पास, कहीं कुछ, क्यों जी के आपने सफर करना है। चले एक और मिसाल ले ले, प्रेगनेंसी है कि नहीं आपके पता नहीं, होना होगा, बच्चा तो हो जाएगा। भाई क्या मतलब है प्रेगनेंसी और आप कहते हैं मुझे नहीं पता, मानेगा कोई? और प्रेगनेंसी की कोई अलामत ना, और उठते बैठते कहने लगे कि बस उम्मीद है कि बच्चा हो जाएगा, उम्मीद है कि बच्चा हो जाएगा, लेकिन जो उसकी अलामत है एक वासे वो भी ना हो, तो कोई मानेगा? तो बात का खुलासा क्या निकला? दुनिया में जो कुछ हो रहा होता है, जो होना होता है ना, उसकी अलामतें दिखती हैं कि ये काम होने वाला है। इसी तरह जन्नत में जाने वाले की दुनिया में अलामतें दिखती हैं, उसकी भागदौड़ दिखती है, उसकी मेहनत और कोशिश दिखती है, उसका अपने वर्क को संभाल के रखना दिखता है, उसका अपने माल को कीमती समझना दिखता है कि ये जन्नत में जाने वाला है। वो एक लफ्ज़ बोलता है तो 10 दफा सोचता है, क्योंकि उसको पता है कि मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीबुन अतीद, सूरत काफ की आयत है, कि जो लफ्ज़ जुबान से निकलता है पास बैठा हाजिर फरिश्ता उसको उचक के ले जाता है। उसको पता है, वो देखेगा तो 10 दफा सोचेगा, क्योंकि अलम नजल लहू आईनैन वलिसानम व शफतैन व हदैनाहु नजदैन, क्या हमने तुम्हें 2 आंखें और 2 होंठ और एक तुम्हें कान नहीं दिए? क्या किया इन नेमतों का? यानी एक जन्नत में जाने वाला शख्स बहुत बाशऊर होता है, एक्स्ट्रा केयरफुल, सफाई पसंद होता है, वो छोटे छोटे गुनाहों को भी चुन चुन के अपने रास्ते से हटाता है, कहते नहीं मैं बहुत डिसेंट हूँ, मैं इन गुनाहों में नहीं पड़ता। वो जैसे सूरह फुरकान में आता है ना, मर्रु किरामन, जब लख के पास से गुजरते इज्जत से गुजर जाते, वो कहते हमें सूट नहीं करता कि हम इस महफिल में बैठे, डज इट सूट्स अस कि मैं इस जगह पे जाऊं, मैं ये कपड़े पहनूं, ये मुझे सूट करते हैं, ये मेरे स्टैंडर्ड से बहुत गिरी हुई चीज है। उसको फतवे की जरूरत नहीं होती, हलाल हराम है, मकरूह है, जायज है, दूसरे कर रहे, वो कहता है ये मेरा स्टेटस नहीं। देखिए बाज लोग इतवार बाजार से शॉपिंग कर लेते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, करनी चाहिए, अगर आपको अच्छी सब्जी मिलती है आपके करीब है आप कर लें। कुछ कहते हैं लोग मैं इतवार बाजार से खरीदूं, मैं फलां सुपर मार्केट से खरीदूंगा, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड है। यही तकवा है। आखिरी बात करके अपनी बात पूरी करती हूँ। आप देखिए कि घर में गुर्बत होती है ना तो उसका रंग होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला हालात अच्छे करता है, बेटे भी काम करते हैं, कभी प्रमोशन हो जाती है या कारोबार था तो उसमें रंग लग जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता घर का रंग बदलता है, पुराने सोफों पे कपड़ा चढ़ने लगता है, पर्दे बदलने लगते हैं, पेंट होने लगता है, फिर 2 साल बाद वो कहते हैं ये घर छोटा पड़ा है, बड़ा होगा, लोग सब जान जाते हैं कि इनका कारोबार माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से बरकत में है ना। अब जो 5 साल पहले जिस जगह से चीज़ खरीदी थी अब वो अच्छी नहीं लगती, वो मोटी लॉन वाइल का जोड़ा अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि अब ब्रांड की आदत पड़ गई। हुआ क्या? आखिरी जुमले हैं, हुआ क्या कि दौलत बढ़ी ना तो स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया, पहनने का, ओढ़ने का, खाने का, शॉपिंग का। बस मोमिन की यही दौलत है तकवा। इत्तकुल्ला क्या है कि जैसे दुनिया की दौलत बढ़ती है तो लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ता है ना, तकवा की दौलत बढ़ती है ना तो नेकियों का स्टैंडर्ड बढ़ता है। 5 नमाजें ये तो सब पढ़ते हैं, मैं तो कुछ और भी करूंगी, ये रोजा रखना सभी 30 रोजे रखते हैं तो मैं ही 30 रखूं, ये तो कोई बात नहीं, मुझे तो कुछ एक्स्ट्रा रखना है, मुझे पीर जुमेरात का रखना है, मुझे 3 दिन रखने हैं महीने में, मुझे मुहर्रम के 9-10 रखनी है, मुझे जिलहज के 10 रोजे रखने हैं। तकवा के साथ अपनी नेकियां छोटी लगने लगती हैं, और एक वक्त आता है कि जितना एक इंसान तकवा में बढ़ता जाता है ना, वो उसकी चॉइस बढ़ती ही जाती है। कभी आप कुरान पढ़ें तो सहाबाए कराम के सवालों पर गौर करें, यसलूना कमाज़ा युन्फिकून, ये आपसे सवाल करते हैं कि हम क्या खर्च करें। एक दफा अल्लाह ने जवाब दे दिया, फिर कुछ अरसे बाद पूछ लिया, अल्लाह जी हम क्या खर्च करें? ये कौन पूछता है जिसका दिन ब दिन तकवा का लेवल बढ़ रहा होता है? तो दुआ करें कि हम आखिरत की तैयारियां करने वाले बन जाएं। आप कहेंगे इसका तरीका क्या है? बड़ी बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इससे अगली आयत का सिर्फ तर्जुमा ले लीजिए, ये जवाब है। मुझे ये जवाब आता है, मुझे और नहीं आता, मुझे ज्यादा कुछ आता भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इस एक आयत को बुनियाद बनाती हूँ कि आखिरत की तैयारी करनी है तो कैसे करें, जन्नत का मौसम क्या है, जन्नत में कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या चीज़ें हैं जो फायर प्रूफ बंदे को करती हैं, उसका जवाब लो अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिल लरअयतहू ख़ाशिया मुतसद्दिया मिन ख़शयतिल्लाह। अगर हम नाजिल करते इस कुरान को एक पहाड़ पर, अलबत्ता जरूर तुम देखते उसको कि वो कांप जाता, खाशियन मुतसद थरथराने लगता, मिन खशियतिल्लाह अल्लाह की खशियत से। यानी ये कुरान अल्लाह ने अपने नबी को कहा कि नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, इसको नाजिल किया तेरे दिल पर, एक ईमान वाले के दिल पर इस कुरान का असर नहीं हो रहा, तो पहाड़ पे अगर हो तो वो तो पहाड़ कांपने लग जाए। وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ। ये तो मिसालें हैं जो हम लोगों को बयान करते हैं ताकि वो गौर व फिक्र करें। इसका जवाब ये है, जिस लेवल पे आपका मेरा कुरान का ताल्लुक है ना, इसको बढ़ाएं, चेक करें किस हद तक, क्या इस कुरान ने मुझे तोड़ा। बात लोग कहते हैं हम पढ़े हुए हैं, तो मैं कहती हूँ आप टूटे हुए भी हैं। क्या मतलब कुरान पढ़ के टूटना पड़ता है? बिल्कुल टूटना पड़ता है। देखिए खराब चीज़ है ना, उसको ठीक करना हो तो एक दफा कहते हैं गिरा के सारी नई बना लो, थोड़ी खराब हो तो कहते हैं रेनोवेट कर लो, ये दीवार निकाल दो, इधर टाइलें लगा लो, फर्श चेंज कर दो। कुरान पढ़ने से पहले की शख्सियात इसी तरह होती हैं, कोई तो उमरे फारूक होता है गुनाहों में लतपत, और कोई बिलाल होते हैं, और कोई सिद्दीक होता है पहले भी। किसी को ज्यादा चेंज होना पड़ता है कुरान पढ़ के, किसी को कम, लेकिन चेंज जरूर आती है। कुरान पढ़कर सख्त दिल के लोग टूट जाते हैं, और जो नरम दिल के लोग होते हैं ना, उनको कुरान तसल्लियां देता है। आप और मैं खुद से कहे मेरा इस कुरान से क्या ताल्लुक, बस उसको एक स्टेप ऊपर ले आए। पांच हक हैं इस पर ईमान, अलहम्दुलिल्लाह सबका है। हाँ अलग बात है कि अब हमारी नस्लों के जहन ऐसे साफ किए जा रहे हैं कि उनके दिलों में इसके बारे में शकूक और शुबात आ जाए, अल्लाह हम सब के लिए आसान करे। लेकिन कुरान पे ईमान कम अज़ कम हम मुसलमानों का अभी तक बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। दूसरी बात यह कि इसको सही पढ़ना, पढ़ते हैं कुरान, ठीक पढ़ती हो, किसी को सुना ले। देखिए माशाल्लाह आप तो इतने ब्लेस्ड हैं, 99% मुस्लिम आबादी है हमारे मुल्क की। हम जैसे उनसे पूछिए, किसी मुल्क में भी जाओ ना तो मैं उनके फिगर्स देखती हूँ कि इस मुल्क में कितने परसेंट मुस्लिम्स हैं। अब तो ये स्काइप आ गया, मुझे लगता है पाकिस्तान में भी लोग स्काइप पे पढ़ाने लग गए, ऑनलाइन पे पढ़ाते हैं। अपना कुरान ठीक करें, किसी अच्छी टीचर को ले सुना ले। आप देखिए ना माशाल्लाह अभी जनवरी की 28 है आज, रमज़ान इस दफा अल्लाह ने चाहा तो मई के एंड पे आ रहा है, चार साढ़े चार महीने, आप इसमें एक दफ़ा अपना कुरान ठीक कर लें, क्योंकि रमज़ान में आपने बहुत सारा पढ़ना है इंशाल्लाह। गलत तो नहीं पढ़ना, कुरान के हर लफ्ज़ पे अजर है, पर ठीक कुरान पढ़ने का, गलत पढ़ने का तो नहीं है। इस्लाह करवाएं और उसके ऊपर अपने आप को तैयार करें, और इन चार पाँच महीनों में कुरान पूरा कर लें। फिर दूसरी बात है इसका तर्जुमा, जो मैं कह सकती हूँ कि मेरे दिल की पुकार है, मेरे से कुछ और ना कहे कोई, सिर्फ एक चीज़ जिस पे मैं कहती हूँ कि अगर मेरी बात पे कोई मान जाए ना, तो मैं अल्लाह की शुक्र गुजार हूँ कि आप इस कुरान के लफ्जी तर्जमे को सीखना शुरू करते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि गफलत इतनी है कि याद होना करना तो दूर की बात, अक्सरियत को इसकी अहमियत का पता ही नहीं है। बस आप देखिए अभी मैं तिलावत प्ले की थी, क्या ये आयतें हमारे दिल की दुनिया को बदल रही थी? सिर्फ उसको बदलेंगी जिसकी तवज्जो होगी और जिसको समझ आ रहा होगा, जिसके दिल में इस कुरान का रंग जाएगा, जिसको महसूस होगा कि ये कुरान मुझे अंदर से तोड़ेगा। आप कई ऐसे कारियों को देखे जो सुने तो ऐसे लगता है कि हिचकियां ले लेके रोते हैं। फिर याद याद आती है कि लो अनज़ल नहाज़ल कुरआन अला जबलिल लरअयतहु ख़ाशिया मुतसद्दिया मिन ख़शयतिल्लाह। वाकई उनको देख के लग रहा होता है कि उनका दिल जो है वो पहाड़ बन गया और पहाड़ कांप रहा है कुरान पढ़ के। لفظی ترجمہ یاد کریں. آپ کو نہیں سمجھ آتا نا پھر بھی یاد کریں. تین سپارے اگر آپ لفظ بہ لفظ یاد کر گئے 50% قرآن سمجھ آئے گا. پھر آپ کی تلاوت زندہ ہوگی, پھر آپ کی تراویاں زندہ ہوں گی, پھر آپ جب پڑھیں گے تو روئیں گے. میں اکثر اللہ کی شکر گزار ہوتی ہوں, لیکن اس وقت تو دل کی عجیب حالت ہوتی ہے جب کوئی ساتھی, کوئی اسٹوڈنٹ حرم میں جا کر یا تراویوں میں قرآن پڑھ کے روتے ہیں اور وہ پھر میسج کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں آپ کو بہت یاد کیا کہ ہمیں قرآن سمجھ آ رہا تھا. ورنہ تو گونگا بہرا, کس کو سمجھ آتا ہے قرآن آج؟ میں اکثر خود کو جھنجھوڑتی ہوں, اللہ ہماری امت کو کوئی جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے پوچھے کہ یہ امت بغیر سمجھے قرآن پڑھتی ہے, اور جس دن اس کو سمجھ آنے لگ گیا اس دن کیا بنے گا؟ یہ پھر ٹوٹیں گے. آج ہم کو نہیں, ہم تو سخت عمر میں اور بھی زیادہ سیکھے. اتنا آسان ہے, اللہ نے اس کو آسان کر دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. غور تو کرو, نصیحت تو پکڑو. یہ لفظی ترجمہ شروع میں مشکل تو لگتا ہے, لیکن میں سوچتی ہوں اردو پڑھنے والوں کو اگر قرآن کا لفظی ترجمہ مشکل لگنا ہے تو پھر تو ہر ایک کو مشکل لگے گا, کیونکہ ہماری اردو اور عربی میں 80% لفظ ایک ہی ہے. آپ دیکھیں نا, الف با تا اردو کے اور عربی میں چند لفظوں کا فرق ہے. چے, ٹا, ڈال, اڑے, یہی ہے نا, چار چھ, پانچ لفظ ہیں فرق, چار ہی کا فرق ہے. تو باقی تو ساری عربی ساتھ ہے ہمارے. اس کے لیے کوشش کریں. الحمدللہ آج گھروں میں یہ کام موجود ہے. مجھے نہیں پتا آپ کے شہر میں, اس علاقے میں کتنی کلاسز ہوں گی, آپ ڈھونڈیے. دیکھیے سیکھنا پڑتا ہے, کوئی کام گھر بیٹھے نہیں ہوتا. آپ کو مشکل ہے گھر سے نکلنا, چھوٹے بچوں کی مائیں ہیں, بڑے لوگ ہیں, سیڑھیاں چڑھنے اترنے کا مشکل ہے, رائڈ پرابلمز ہیں, تو یہ ہمارے استاد ہمارے آگے بیٹھے ہیں. یقین کریں ٹیلی فون آج ہمارے لیے استاد بن چکا ہے, لیکن ایسا استاد ہے کہ جو ہمارے اشاروں پہ چلتا ہے. ہم کلک کریں تو وہ بول پڑتے ہیں, ہم کلک کریں تو وہ چپ ہو جاتے ہیں. اس سے بھی زیادہ آسان عمل اور کیا ہوگا؟ الحمدللہ ہمارے پاس بھی قرآن کے ایسے گروپس موجود ہیں. آپ میں سے جو سسٹرز چاہتی ہیں کہ آپ کو قرآن پاک کے ساتھ باقاعدہ ایسا شغف ہو کہ جس میں ایک لائن بن جائے. دیکھیں نا, اب سارے بیٹھے ہیں تو ہم بیٹھ کے سن رہے ہیں, اور اگر اکیلے ہوتے تو اس وقت ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی بھی نہ سن رہا ہوتا. وجہ کیا ہے کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. تو گروپس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک گول دیا جاتا ہے. یعنی مثلا جو گروپس میں جانتی ہوں عام طور پہ ہمارے پاس چلتے ہیں, اس میں بعض میں ہفتے میں چار دن 20, 25, 30 منٹ کی ایک آڈیو بھیجتے ہیں. یہ لوگ ترتیب سے قرآن شروع کیا ہوا ہے, کچھ میں سیرت شروع ہوتی ہے, کچھ میں حفظ شروع ہوا ہے. جیسے آج کل سورت کہف چل رہی ہے, رمضان تک پوری ہوگی. حفظ, ترجمہ اور تفسیر, اور کیا چاہیے؟ اگر رمضان کے بعد آپ سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھیں اور زبانی پڑھیں اور پڑھتے ہوئے وہ چار فتنوں کا توڑ بھی آپ کو مل جائے جو اس میں, اور کیا چاہیے؟ پچھلے سال رمضان سے پہلے سورت ملک اور سورت سجدہ ہوئی تھی. آپ جس گروپ میں شامل ہونا چاہے ہوئیں, تزکیہ گروپ, تربیہ گروپ, اور بہت کچھ ہے. لیکن اس کے لیے میں سوچتی ہوں اب تو کوئی حجت ہی نہیں رہی. ابھی آپ اور میں یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں, ہمارے ساتھ اللہ کی رحمت سے بہت سارے لوگ گھر سے سن رہے ہیں. تو آپ اپنے وقت کو پراپر استعمال کریں. ادھر کوئی بھی ذمہ داری لے لے آپ میں سے, کیونکہ میرے ساتھ تو ادھر کوئی اپنے اسٹوڈنٹس میں سے ہے نہیں ہے, لیکن جو لوگ سنتے ہیں آپ اپنے چاہیں, اگر آپ کی مرضی ہے, صرف آپ کو ایک انفارمیشن دی جا رہی ہے یا انویٹیشن ہے, آپ کا وہ نمبر جس پہ آپ کا واٹس ایپ چلتا ہے, اور موسٹلی لوگوں کا وہ سیل فون ہوتا ہے, +92 کر کے آپ اپنا نام اور وہ لکھ کے لسٹ میں دے دیجئے ان کو. آپ کو انشاءاللہ آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی ایڈمن کسی گروپ میں بھی ایڈ کر لے گا. آپ دو تین ڈفرینٹ گروپس میں بھی اگر ایڈ ہو گئے, دو دن سنیے, جو گروپ آپ کو اپنے اپروپریٹ لگتا ہے, آپ کے لیول کا ہے, اس میں رہیے. دوسرے کو اینی ٹائم لیو کر سکتے ہیں, اور میرا گمان ہے کہ لوگ لیو نہیں کرتے بلکہ اپنے پیاروں کے بھی نمبرز دیتے ہیں کہ ہمیں ڈالیں. تو اس سے آسان کیا ہوگا ہمارا اس وقت اس گھر میں آنا؟ اس کا مقصد صرف ایک لیکچر نہیں تھا. لیکچر کیا مشکل ہے, آپ کو ایک دو لنکس دے دیں, آپ بیٹھ کے سن سکتے ہیں. لیکن یہ وقت جو ہوتے ہیں نا, یہ موٹیویشن کے ہوتے ہیں. وہ بھی ایک درس ہی تھا جس میں ہمیں بھی موٹیویشن ملا تھا. راستہ بدل جاتا ہے. آج رات کو یہ سوچ کے سوئیے گا بستر پہ کہ اگر میری موت کا وقت قریب ہے تو کیا ہوگا. تو بہرحال یہ تین چیزیں, اور چوتھی چیز پھر ترجمے کے ساتھ تفسیر تو ہوتی ہے. فہم سمجھیے, قرآن کہتا کیا, روکتا کس چیز سے, اور پھر اس کے بعد عمل. عمل آتا ہی نہیں ہے جب تک سمجھ نہ آئے. انما یخش اللہ من عباده العلماء. ہم نے تو عالمہ کا کورس 7-8 سال کا رکھا ہوا نا, आलिमा फाजिला का कोर्स नहीं, आलिम वो है जो अल्लाह से डरता है और इल्म खशियत देता है। अल्लाह ताला आपको मुझे दे दे। और आखिरी चीज़ फिर ये होगी कि जब आप इल्म सीख लेंगे, अमल कर लेंगे, लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, इबलाग। आज इसकी भी बहुत कमी है, हम मुसलमानों में ये दर्द ही कम रह गया। वैसे आप सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको किसी नॉन मुस्लिम को देखना नहीं पड़ता। क्या पता है आपको क्या तकलीफ होती है, यकीन करें दिल पिघल पिघल जाता है। गोरे चिट्टे चेहरे, चमकती हुई चमड़ियाँ और खुदा को ही नहीं मानते। मैं आपको बता नहीं सकती उस वक्त दिल के कितने टुकड़े होते हैं जब वो कहते वी डोंट बिलीव इन एनी गॉड, आई एम एथियस्ट, आई डोंट बिलीव, आई डोंट थिंक सो देर इज अ गॉड। जो लोग दुनिया की ज्यादा जन्नतों में रहते हैं ना, उनको खुदा ज्यादा ही दूर दिखता है। तो फिर अपने ही मुसलमानों को कम अज कम हम नमाज रोजे की तलकीन कर लें, शिर्क को ही खत्म करें। आज की डेट लिख के एक साल के लिए आप सब पाकिस्तान में रहने वाले अपने अपने इलाके के शिर्क को दूर करें। और कैसे करना है, जाके सारों को तोड़ दें? नहीं, वो बुत तोड़िए जो दिलों में है, जो अल्लाह के नबी ने अपने मक्का में रहने वालों के तोड़े थे। एक वक्त जरूर आएगा कि इन्ना फतह न लक फतह मुबीना कुल जाल हक वजहक अल्बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। तो अल्लाह ताला आपकी मेरी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाए। यहाँ पे रुकते हैं, अल्लाह ताला आप सबको जजाए खैर दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व तुबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाब रहीम। व सल्लल्लाहु ताला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।